का था, रूह वही रूप नया।
आप सुन रहे हैं कहानी नकली नाक का भाग दो। अभी तक आपने सुना कि किस तरह फरीदी और हमीद एक ऐसे कातिल की तलाश में रामगढ़ के लिए चल पड़े जिसको वो आज तक नहीं पकड़ पाए। क्या वो उन्हें रामगढ़ में मिलेगा? ऐसा क्या हुआ जो उन्हें रामगढ़ तक आना पड़ा? और वो ऐसी क्या वारदात थी जिसके चलते वो आज तक इस कातिल को नहीं पकड़ पाए हैं? सुनिए भाग दो में। उसी दिन शाम को फरीदी और हमीद नवाब अख्तरुज़्ज़मा की कोठी पर मौजूद थे। नौकरों ने उन्हें गेस्ट रूम में पहुंचा दिया था और अब वे वहां बैठे बेगम के आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद एक दरवाजे में लटका हुआ रेशमी पर्दा हिला और एक नाजुक सी नौजवान औरत उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी चंपई रंगत पर रेशम की सफेद साड़ी बहुत ज्यादा खिल रही थी। बड़ी बड़ी नशीली आंखें बारीक और गहरे काले बालों के नीचे जादू सा जगाती मालूम हो रही थीं। ऊपरी होंठ में ऊपर की तरफ हल्का सा घुमाव था। कानों की लवों के करीब गालों का उभार बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे अभी वहां से लज्जतों के सोते उबल पड़ेंगे। दोनों उसे देख कर खड़े हो गए।
बैठिए,
उसने नर्म आवाज में कहा। फरीदी और हमीद बैठ गए। फरीदी को लग रहा था कि वो बहुत ही शर्मीली थी। फरीदी से आंख मिलते ही उसके चेहरे पर गहरी लाली दौड़ गई। वो बातचीत करते वक्त अपनी नजरें ज्यादातर नीचे ही रखती थी। मैं एक बहुत ही गमगीन कहानी आपको याद दिलाने आया हूं, फरीदी ने कहा। औरत ने सिर उठाकर सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा और फिर आंखें नीचे कर ली। मेरा मतलब है कि मैं नवाबजादा साहब की अफसोसनाक मौत।
तो क्या आप उनके कोई दोस्त हैं?
औरत बोली। जी नहीं, मेरा ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से है।
मेरा ख्याल है कि मैं कई पुलिस वालों को अपने बयान दे चुकी हूँ,
औरत कुछ उकता कर बोली। नहीं नहीं, मेरा मतलब आप गलत समझी, फरीदी मुस्कुरा कर बोला। मैं आपको किसी किस्म की तकलीफ देने नहीं आया हूँ। मैं तो आपसे उनके कुछ निजी मामले के बारे में बात करना चाहता हूँ। शर्त यह है कि आप खुशी से इसके लिए तैयार हों।
भला मैं उनके निजी मामले के बारे में क्या बता सकूंगी?
मुझे खबर मिली है कि आप उनकी सगी चचेरी बहन हैं।
आपको सही खबर मिली है,
औरत बोली।
और मैं बार बार उनके गम को ताजा नहीं करना चाहती।
औरत की आंखों में आंसू आ गए। मैं वाकई आपको तकलीफ दे रहा हूं, मगर क्या करूं, मेरी मजबूरी है।
जो कुछ पूछना हो पूछिए, अगर मुझे मालूम होगा तो जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगी।
क्या इस दौरान मरहूम ने अपनी शादी करने की कोशिश की थी? फरीदी ने पूछा। औरत चौंक पड़ी।
शादी?
वो फरीदी को गौर से देखते हुए बोली।
मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं।
क्या आप दोनों के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे?
अगर मुझे जानकारी ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे।
अगर आपको मेरे सवाल से तकलीफ पहुंची तो मैं माफी चाहता हूं।
कोई बात नहीं।
मुझे ये ख्याल दरअसल इसलिए पैदा हुआ कि यहां आपके अलावा उनका कोई और करीबी रिश्तेदार नहीं था। ऐसी सूरत में ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि उन्होंने आपसे सलाह ली हो।
अगर उनका ऐसा ख्याल था तो मुझे खुद हैरत है, वे मुझसे इसका जिक्र जरूर करते।
मुझे ऐसी खबर मिली है कि वे अपनी शादी की फिक्र में थे।
हो सकता है रहे हों।
और मेरा ख्याल है कि उन्होंने खुदकुशी की है।
खुदकुशी?
औरत चौंक कर बोली। जी हां,
मगर खुदकुशी की वजह?
मोहब्बत में नाकामी।
मैं आपका मतलब नहीं समझी।
जिस लड़की से वे शादी करना चाहते थे शायद उसने इनकार कर दिया था।
ओह,
फरीदी खामोश हो गया। वो थोड़ी देर तक कुछ सोचती रही फिर बोली।
मुझे हैरानी है कि मुझे इसकी खबर ना हो सकी, वरना उनकी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करती। ये दिल का मामला है बेगम साहिबा। वो लड़की उनके साथ शादी करना नहीं चाहती थी तो आप कर भी क्या सकती थी। ये भी ठीक है, औरत बोली। मैं उस लड़की का नाम और पता जानना चाहती हूँ। मुझे अफसोस है कि मुझे खुद अभी तक उसका नाम और पता मालूम नहीं चल सका है। तब तो ये मुझे अफवाह ही मालूम होती है, औरत बोली। शाकिर भाई खुदकुशी नहीं कर सकते, और वो भी एक औरत के लिए? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती।
इसी पर तो मुझे भी हैरत है, क्योंकि मैंने उनके बारे में सुना है कि वो एक फिलोसफर किस्म के आदमी थे, फरीदी ने कहा, और उसके बाद फिर खामोशी छा गई। आपके अलावा उनका कोई और भी करीबी रिश्तेदार है? फरीदी ने पूछा।
जी नहीं।
तब तो उनकी जायदाद भी?
जी हाँ, मुझे ही मिलेगी,
औरत उसकी बात काटते हुए बोली।
और यही सबसे बड़ी मुसीबत है, अगर ये बात ना होती तो शायद मुझसे इतनी बार सवाल ना किए जाते।
आप फिर मेरा मतलब गलत समझें, फरीदी ने कहा। मैंने ये बात यूं ही कह दी थी, वरना इसका ताल्लुक मुझसे नहीं।
ये आपकी गलती नहीं है, बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि मैंने उनकी जायदाद के लालच में उन्हें जहर दिलवा दिया है।
अरे मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि ये तो खुदकुशी का केस है, फरीदी जल्दी से बोला।
लेकिन मैं इस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं।
फिर आपका आखिर क्या ख्याल है?
मेरी समझ में नहीं आता कि क्या कहूं।
उनका कोई दुश्मन?
वो ऐसे आदमी ही नहीं थे कि उनका कोई दुश्मन हो सके।
बहरहाल ये खुदकुशी के अलावा और कुछ नहीं, फरीदी ने कहा। मैं काफी सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं। अभी ये बातचीत हो ही रही थी कि बरामदे में किसी के भारी भरकम कदमों की आवाज सुनाई दी। बेगम साहिबा हैं? किसी ने बरामदे में पूछा, और फिर कमरे के दरवाजे पर एक लंबा सेहतमंद आदमी दिखाई दिया। नखशिख आकर्षक थे, बारीक तरशी हुई काली मूछें उसके चेहरे पर दिलकश लग रही थीं। उसकी उम्र 40 साल के लगभग रही होगी, लेकिन देखने से वो अपनी उम्र से कुछ कम ही मालूम होता था। उसने सुरमई रंग का सूट पहन रखा था, वो कपड़ों से अच्छा आदमी मालूम होता था। औरत उसे देखकर खड़ी हो गई, फरीदी और हमीद भी खड़े हो गए।
आइए आइए कुंवर साहब,
औरत बोली। आप लोग बैठिए, आने वाले ने एक सोफे पर बैठते हुए कहा। फरीदी को ऐसा लगा कि वो जैसे जानबूझकर उनकी तरफ से लापरवाही बरतने की कोशिश कर रहा हो।
कुछ और पूछना है आप लोगों को?
औरत बोली। फरीदी इसका मतलब समझ गया। नहीं नहीं जी नहीं, तकलीफ देने के लिए एक बार फिर माफी चाहता हूं, फरीदी ने उठते हुए कहा। आप लोगों की तारीफ? आने वाला बोला।
पुलिस से ताल्लुक रखते हैं,
औरत ने कहा। ओह, उसने इस अंदाज में कहा जैसे इसकी कोई अहमियत ना हो। हमीद और फरीदी बरामदे में निकल आए। वो गेट के करीब पहुंचे ही थे कि एक कार कंपाउंड के अंदर आई। फरीदी और हमीद एक तरफ हो गए। अरे फरीदी, किसी ने कार के अंदर से कहा, और फरीदी चलते चलते रुक गया। आवाज जानी पहचानी मालूम हुई। अरे आप, फरीदी के मुंह से अचानक निकला। कार से नवाब रशीद बुज़्ज़मा और गजाला उतर रहे थे। आप यहाँ कहाँ? गजाला अपनी जिंदगी की भरपूर मुस्कुराहट के साथ बोली। ये भी अजीब इत्तेफाक है, फरीदी ने कहा। शाकिर की मौत की खबर सुनी थी, क्या बताऊं, बहुत नेक लड़का था। सईदा गजाला की सहेली है, गजाला ने मजबूर किया कि मातम पुरसी के लिए चलना चाहिए। वैसे यूं भी इस बार मेरा इरादा रामगढ़ आने का था, लेकिन तुम यहां कैसे? शाकिर की मौत के बारे में कुछ पूछताछ करने आया था, फरीदी बोला। तो क्या तुम इस काम के लिए खास तौर पर बुलाए गए हो?
जी नहीं, अपने एक दोस्त के लिए काम कर रहा हूं।
कुछ पता चला?
जी नहीं, बहुत टेढ़ा मामला लगता है। ये भी अजीब हादसा हुआ, गजाला बोली।
अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि बरामदे में सईदा खड़ी हुई दिखाई दी। पहले तो वो कुछ देर तक उन्हें घूरती रही, फिर तेज तेज कदमों से चलती हुई उनके पास आई। जनाब, शायद मेरे मेहमानों को इस मामले से कोई सरोकार नहीं, वो फरीदी से तेज आवाज में बोली। अरे अरे भाई, नवाब साहब बोले, ये तो अपना फरीदी है।
फरीदी? क्या मतलब?
सईदा चौंक कर बोली, अहमद कमाल फरीदी, मेरे एक मरहूम दोस्त की निशानी और एशिया का मशहूर जासूस। सईदा थोड़ी देर तक फरीदी को हैरानी से देखती रही, फिर तभी संभल कर बोली,
मैं अपने रवैये के लिए शर्मिंदा हूँ, भला मैं कैसे जान सकती थी कि आप कौन हैं, जबकि आप लोगों ने तो अपने बारे में पूरी तरह बताया ही नहीं।
कोई बात नहीं, मैंने आपसे शिकायत तो की नहीं, फरीदी मुस्कुरा कर बोला।
गजाला से मैंने आपकी काफी तारीफ सुनी है, और आप वाकई में तारीफ के काबिल हैं,
सईदा ने कहा। फरीदी खामोश रहा, उसकी नजरें सईदा की तरफ लगी रही। सईदा के चेहरे पर किसी तरह के कोई आसार न थे। नवाब रशीदुज़्ज़मा इस खामोशी से तंग आकर बोले, अच्छा मियां, अब तुम जाओ, मगर शाम का खाना साथ ही रहेगा। क्यों बेटी सईदा?
जी हाँ, मुझे मालूम न था कि फरीदी साहब और आप लोगों के ताल्लुकात ऐसे हैं, वरना मैं खुद ही आ गया थी।
सईदा के अल्फाज में खुशी और बनावटी शिष्टाचार के मिले जुले जज्बात साफ छलक रहे थे, मगर फरीदी पर इसका कोई असर ना हुआ। बरामदे में कुंवर साहब को देखकर सईदा ने गजाला से कहा,
आओ बहन चलें, इत्मीनान से बातें होंगी।
हाँ तो फिर फरीदी साहब आप जरूर आ रहे हैं? हाँ, गजाला ने मुड़ते हुए कहा। हाँ हाँ, फरीदी साहब तो जरूर आएंगे, ये बंदा हाजिर नहीं हो सकेगा। हमीद ने कुछ इस तरह मुंह बनाकर कहा कि सईदा भी हंस पड़ी। हंसते हंसते उसकी निगाह कुंवर साहब पर पड़ी, वो ठिठकी और फिर तेजी से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ी। गजाला के ठहाके पर उसने मिनमिनाते हुए कहा, अभी बताती हूँ, क्यों मरी जा रही है। नवाब रशीदुज़्ज़मा भी बरामदे के करीब आ चुके थे, उन्होंने मुड़कर देखा, फरीदी और हमीद दरवाजे से बाहर जा रहे थे। इधर उधर की बातचीत के बाद गजाला पूछ ही बैठी,
मगर तुमने ये नहीं बताया कि कुंवर साहब कौन है? जहां तक मेरा ख्याल है, इससे पहले मैंने कभी उनको तुम्हारे यहाँ नहीं देखा, और ना ही अख्तर भाई के दोस्तों में ऐसे कोई कुंवर साहब थे।
सईदा सुनती रही और थोड़ी देर बाद खामोश रहकर बोली,
ये इनके पुराने दोस्तों में से हैं। मैं नहीं चाहती थी कि इतनी जल्द तुम्हें मिलवा दूं, कुछ झक्की किस्म के आदमी हैं, शायद तुम्हें उनसे मिलकर खुशी भी ना हो। शाकिर भाई मरहूम और कुंवर साहब से एक मामूली सी किताब पर झगड़ा हो गया था।
आखिरी जुमला कहते कहते उसे लगा जैसे वो कोई ऐसी बात कह गई हो जो उसे न कहना चाहिए थी। अपने साथ गजाला को लिए वो बढ़ी। नौकर से मालूम हुआ कि कुंवर साहब उसकी 8 साल की बच्ची रेहाना के साथ बाग में खेल रहे हैं। गजाला और सईदा बाग में पहुंची। कुंवर साहब रेहाना को गोद में उठाए हुए नाच रहे थे। उन्होंने कई तितलियां और भौंरे पकड़ रखे थे और उन सब को डोरे से बांध रखा था, और सब डोरों का आखिरी सिरा उनकी गर्दन से बंधा हुआ था। उनके नाचने के साथ साथ तितलियां भी इधर उधर घूम रही थी। मासूम रेहाना इस खेल से बहुत खुश थी। सईदा अब तक खामोश थी, उसने मुस्कुरा कर कहा,
गजाला आओ तुम्हें कुंवर साहब से मिलवाऊं। कुंवर साहब, आपसे मिलिए, आप मेरी प्यारी सहेली गजाला, और आप हैं कुंवर जफर अली खां, इनके पुराने जिगरी दोस्त और मेरे बहुत बड़े हमदर्द और सहारा।
कहते कहते उसकी आंखें छलक उठी। कुंवर साहब ने सईदा और गजाला की तरफ देखा और कुछ सूखी और दुखी आवाज में बोले,
चलिए घर में चलकर बैठें, शाम को आपके कुछ मेहमान भी तो आएंगे।
शाम के खाने पर हमीद और फरीदी को दावत दी गई थी। वादे के मुताबिक उन्हें रात 7 बजे पहुंच जाना चाहिए था, मगर 8:30 बज चुके थे और उनका कहीं पता न था। मजबूर होकर नवाब साहब ने सईदा से कहा, अब इंतजार करना बेकार है, खाना लगवा दो। खुद अपने हाथ से मुर्ग पकाया था, मगर उन लोगों की किस्मत में ही ना था, फंस गए होंगे कहीं। खाना मेज पर लगा दिया गया था। नवाब रशीदुज़्ज़मा मूर्ख की टांग काट कर अलग ही करना चाहते थे कि झन की आवाज के साथ कमरे के सब बल्ब टूट कर जमीन पर आ गिरे। एक बल्ब नवाब साहब को बेहद पसंद शाही दाल में गिरा और गर्म गर्म दाल उनके चेहरे पर पड़ी। फायर की पहली 6 आवाजों के बाद एक सेकंड के लिए बिल्कुल सन्नाटा हो गया। नवाब साहब ने देखा कि 2 लोगों ने सईदा और गजाला के मुंह बंद कर रखे थे और उन्हें उठाए लिए जा रहे थे। वे चीखे, मगर चीख निकलने से पहले ही इतने जोर का वार उनके ऊपर पड़ा कि वे चकरा कर गिर पड़े। हल्की हल्की धुंधली धुंधली शक्लें उनके सामने से गुजरी, उनमें से एक फरीदी भी था। उनका हाथ उठा और फिर गिर पड़ा। कुंवर साहब इस हादसे के लिए बिल्कुल तैयार न थे। बिजली के जाते ही वे हड़बड़ा कर उठे और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, उनके सीने पर पिस्तौल लगा हुआ था। पिस्तौलधारी ने गरज कर कहा, खबरदार, अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला चुपचाप खड़े रहो। आवाज उन्हें जानी पहचानी मालूम हुई। उन्होंने आंखें फाड़ कर देखा। सुबह वाला इंस्पेक्टर फरीदी उन्हें घूर रहा था। इतने में उनके साथी ने आकर कहा, उस्ताद काम हो गया, आप चलना चाहिए। अच्छा कुमार साहब, ऐसे ही खड़े रहिए, अगर जरा सा हिले तो न सिर्फ आप खत्म कर दिए जाएंगे बल्कि ये लड़की भी दुनिया में ना रहेगी। फरीदी ने रेहाना की गर्दन पकड़ रखी थी। मासूम लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका भोला चेहरा इस अंधेरे में भी चमक रहा था। उस आदमी ने धीरे से कहा, कुंवर साहब अपनी अंदर की जेब में रखा हुआ कागज मुझे दो। नवाब ज़ादा शाकिर की मौत के सिलसिले में ये कागज बहुत अहमियत रखता है। अगर आप वो कागज मुझे दे दें तो मैं वादा करता हूं कि कीमिया बनाने वाली किताब नवाबजादा की कब्र से निकाल लाऊंगा। आप नवाबजादा के कातिल हैं, आपने उनके खून से अपने हाथ रंगे हैं। अच्छा है कि आप ये कागज मुझे दे दें, ये सब राज मेरे सीने में दफन रहेंगे। वो कागज मेरे पास नहीं है, कुंवर साहब ने हकला कर जवाब दिया। अच्छी बात है, मैं खुद ही निकाले लेता हूं। वो अपने साथी की तरफ इशारा करते हुए बढ़ा। कुंवर साहब की जेब से एक सुनहरा चाकू, एक रूमाल और एक रबड़ की बिल्ली निकली। कागज का पता न था। मायूसी जाहिर करते हुए उसने अपने साथी को इशारा किया, वो गायब हो गया। उसने आखिर बार कहा, कुंवर साहब नवाब ज़ादा शाकिर के सौतेले भाई लेफ्टिनेंट बाकिर आ गए हैं, आपकी सईदा को कुछ भी ना मिलेगा। खैर फिलहाल वो मेरे साथ जा रही है, मेरे असिस्टेंट हमीद ने उसे पसंद कर लिया है। आप खुद ही समझदार हैं, मगर आपको बताना मेरा फर्ज है। अगर मेरा नाम या हमीद का नाम कभी आपकी जबान पर आया या मेरे आज के वाकये का जिक्र छिड़ा तो कीमिया की किताब की तफ्ती पर लिखी हुई तहरीर अदालत में पेश कर दी जाएगी और खुदकुशी का ये केस कत्ल का मुकदमा बन जाएगा। खुदा हाफिज। वो जा चुका था। कमरे में अब बिल्कुल सन्नाटा था। कुंवर साहब कुछ बेहोश से थे। काफी देर बाद उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया। फरीदी का कहीं पता ना था और भयानक पिस्तौल सामने से हट चुका था। रेहाना बेहोश पड़ी थी। कमरे में अंधेरा वैसे ही था। उन्होंने नौकरों को आवाजें दी मगर उनमें से कोई ना बोला। वे 2 कदम आगे बढ़े और धाएं ठिठक कर उन्होंने दूसरी तरफ कदम बढ़ाया और वैसी ही आवाज सुनाई दी। मालूम होता है पटाखे बिछाए हैं, वे बड़बड़ाए। फूंक फूंक कर कदम रखते हुए किसी तरह वे दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। सिटकनी खोलकर वे बाहर आए। उजाले में आते ही उन्होंने चीख कर नौकरों को बुलाया मगर कोई ना बोला। तंग आकर उनके कमरों की तरफ गए। हर एक मीठी नींद के मजे ले रहा था। लाख जगाने पर भी कोई नौकर ना जागा। मजबूरन उन्हें नौकरों का ख्याल छोड़ देना पड़ा। उनका ख्याल था कि शायद कनेक्शन काट दिया गया है। फिर भी उन्होंने बरामदे का स्विच दबाया। बरामदे में रोशनी फैल गई। इसी रोशनी के सहारे वे फिर कमरे में आए। नवाब साहब और रेहाना को वहां से उठाने के बाद उन्होंने फोन उठाया। पुलिस ऑफिस में सब इंस्पेक्टर ने पूछा, हेलो कौन है? कुंवर साहब ने कहा, मैं कुंवर जफर अली खां हूँ, अख्तर लॉज से बोल रहा हूँ, क्या माथुर साहब हैं? जवाब मिला, नहीं। अच्छा सुनिए, आप फौरन यहाँ चले आइए और अगर फरीदी साहब या हमीद साहब हो तो उन्हें भी लेते आइएगा, मगर वे लोग तो 7 बजे से गायब हैं। ठीक है, फिर आप ही आ जाइए। ये कहकर कुंवर साहब ने फोन रख दिया। सब इंस्पेक्टर बिमल मुखर्जी के आने तक कुंवर साहब अपनी दिमागी उलझनों पर काबू पा चुके थे। वे बार बार ये सोच रहे थे कि कहीं उन्होंने धोखा तो नहीं खाया है। मगर वो शक्ल बिल्कुल इंस्पेक्टर फरीदी की थी। और अगर मान भी लिया जाए कि वो इंस्पेक्टर फरीदी नहीं था, तो आखिर वो मुझे मना क्यों कर गया? अगर फरीदी ना होता तो वो मुझे मना ना करता। और अगर फरीदी था तो उसने ऐसा क्यों किया? इंस्पेक्टर फरीदी एशिया का मशहूर जासूस और लुटेरा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिरकार उन्होंने ये तय किया कि वे सब इंस्पेक्टर को ये बता दें कि उस शख्स की शक्ल बिल्कुल फरीदी से मिलती थी। मिस्टर मुखर्जी को पूरा बयान लिखवाने के बाद उन्होंने कहा,
मैंने उसे देखा था, उसका हुलिया और सूरत।
उनका जुमला पूरा भी न हो पाया था कि गोली चलने की आवाज आई और सामने की कॉर्निस पर से एक कबूतर फड़फड़ा कर गिरा और मर गया। कुंवर साहब रुक गए, उनके लिए यह खतरे का सिग्नल था। अभी तक वो मौजूद है दिल्ली में। उन्होंने फरीदी को एक मोटी सी गाली दी। सामने तड़प कर मरने वाले कबूतर में उन्हें खतरे की झलक दिखी। इंस्पेक्टर मुखर्जी गोली की आवाज ही के साथ सिपाही भेज चुका था, और जब सिपाहियों ने आकर ये रिपोर्ट दी कि कोई नहीं है, तो उन्होंने सिपाही चारों तरफ फैला दिए और कुंवर साहब की तरफ मुखातिब हुए। आप बयान जारी रखिए, मगर ठहरिए, ये कबूतर, मगर ये तो पालतू नहीं है, जंगली है। जी हाँ, इन कबूतरों को शगुन के ख्याल से रहने दिया था, कुंवर साहब बोले। इंस्पेक्टर मुखर्जी ने फिर कहा, हाँ आप बयान लिखा रहे थे, उस आदमी का हुलिया। उन्होंने कलम उठाया। जी, वो लंबा सा तंदुरुस्त आदमी था, भयानक, और नाक के पास एक तिल था। अनजाने से कुंवर साहब के मुंह से निकल गया। इंस्पेक्टर ने बयान नोट किया। हिफाजत के लिए सिपाही छोड़कर वो सईदा और गजाला की वापसी का यकीन दिलाते हुए बाहर निकल गया। सईदा के घर वापसी पर ही हमीद साहब के पेट में चूहे कूदने लगे थे कि आखिर वे कुंवर साहब कौन थे। सईदा की उखड़ी उखड़ी बातचीत ने उसे यकीन करने पर मजबूर कर दिया था कि बहरहाल शाकिर के कत्ल में कहीं ना कहीं सईदा का हाथ जरूर है। इसके बावजूद उसके जहन में सईदा की तस्वीर नाचने लगती थी, मगर फिर भी उसमें बेपनाह रोमांटिक खिंचाव था। उसके कान की लवें, उसके तमतमाते गाल, और सबसे बढ़कर उसकी सुडौल कलाइयां, वो गुम हो गया। खामोशी से उकता कर उसने फरीदी से पूछा, सईदा के बारे में क्या ख्याल है? गनीमत है तुम्हारे लिए, फरीदी ने ताना मारते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, किस खच्चर के पट्टे का ख्याल भी उस तरफ गया हो, मैं तो शाकिर के कत्ल के बारे में पूछ रहा था, हमीद ने झेपते हुए कहा। तुमने कुछ कुछ तो ठीक ही सोचा है। बहरहाल शाकिर के घर चल रहे हैं, शायद कोई काम की बात निकल आए। शाकिर की कोठी पर पुलिस का सख्त पहरा था। पूछताछ से मालूम हुआ कि कोई साहब लेफ्टिनेंट बाकर आए थे और अपने को सौतेला भाई बता गए हैं। आज रात को वे बंबई जा रहे हैं और परसों तक वापस आ जाएंगे। अदालत से वे शाकिर की विरासत के सिलसिले में इजाजत निकलवा चुके हैं। इसकी खबर शायद सईदा खातून को मिल चुकी होगी। इतनी बातें जानने के बाद फरीदी घर में दाखिल हुआ। लाइब्रेरी में 2000 के करीब किताबें थी। उनमें से थोड़ी सी तादाद अंग्रेजी और उर्दू के शायरों पर थी, बाकी किताबें शैतानों, काला जादू, हिकमत और फिलॉसफी वगैरह की थीं। कबूतरों की पहचान, कबूतरों के फायदे पर एक बड़ा नुस्खा था। किताबें कुछ जर्मन, कुछ फ्रेंच और कुछ लातिनी जबान में थी। सामने एक बड़ा सा सेफ था। मेज पर रूह और उसकी जानकारी के बारे में किताब पड़ी थी। किताब के कवर पर कुंवर जफर अली खां का नाम लिखा था। अंदर का एक पन्ना फटा हुआ था। फरीदी चौंका और पलक झपकते ही वो किताब उसकी जेब के अंदर थी। हमीद खामोशी से अपने उस्ताद का काम और तरीका देख रहा था। उसे उलझन हो रही थी कि आखिर इस उलट पुलट का मतलब क्या है और इससे क्या नतीजा निकल सकता है। उसने झल्लाकर फरीदी से कहा, मेरे ख्याल से ये सारी किताबें खूनी हैं। बिल्कुल ठीक कहते हो, फरीदी ने अपनी उलट पुलट जारी रखते हुए कहा। जी हाँ, देखिए
उस मोटी सी किताब ने अपने पंजों से शाकिर का गला घोंट दिया। वो मर गया, मगर ये क्या? झल्लाहट में एक मोटी सी किताब उलटते हुए हमीद ने ये जुमले कहे थे, मगर वो किताब बिल्कुल सादी थी। अलबत्ता बीच बीच में तस्वीरें बनी हुई थी। एक जगह खूनी पंजा था और उसके नीचे कुछ लिखा हुआ था जिसे हमीद ना पढ़ सका। उसने किताब उठाते हुए फरीदी से कहा, ये भूत खाने का नायाब नुस्खा देखिए। फरीदी उसे देखते ही दंग रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसे सांप ने काट लिया हो। वो चीखा, हमीद फौरन आओ। अरे मैं नहीं आता, भागते हुए फरीदी के पीछे उसने दौड़ते हुए कहा। फरीदी बाहर निकला। उसने सिपाहियों को हिदायत की कि किसी शख्स को अंदर न घुसने दिया जाए और फिर तेजी से पैदल स्टेशन की तरफ भागने लगा। इस तमाम खोज और तफ्तीश में रात के 10 बज चुके थे। काफी रात हो जाने की वजह से रामगढ़ का पहाड़ी इलाका सुनसान पड़ा था। सड़क पर सिर्फ हमीद और फरीदी के दौड़ने की आवाज आ रही थी। अचानक उनकी रफ्तार सुस्त हो गई। सामने दोनों तरफ के पेड़ों को मिलाकर रस्सी बांध दी गई थी। किनारे से बचकर फरीदी निकला और हांफते हुए हमीद से बोला, दुश्मन को मूंगी खानी पड़ी, खुदा के लिए तेज चलो, अगर बंबई एक्सप्रेस छूट गई तो मुसीबत ही आ जाएगी। दोनों तेजी से भाग रहे थे। स्टेशन सिर्फ आधा मील रह गया था। फरीदी ने सड़क के किनारे से लगे हुए खंभे की रोशनी में देखा, घड़ी में 11 बजने में 10 मिनट बाकी थे और एक्सप्रेस 11:05 पर छूटती थी। उसने रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी। हमीद बेचारा हांफ रहा था, उसके कदम जवाब दे रहे थे कि अचानक उसका सिर किसी चीज से टकराया और वो बैठ गया और चीखा। फरीदी मुड़ा, एहतियात से वो बीच सड़क पर आ गया था ताकि पेड़ों की ओट या सहारा लेकर उस पर हमला ना किया जा सके। हमीद इसका ख्याल ना कर सका। सड़क के किनारे एक पेड़ की डाल से चारपाई बांध दी गई थी और चारपाई से दो इंसानी सूरतें बंधी हुई थी। फरीदी ने टॉर्च जलाई। ओफो, उसके मुंह से निकला और उसने हमीद से कहा, मैं इन्हें उतारता हूं तो तुम ठहरो। चारपाई एक झूले की तरह लटका दी गई थी और सईदा और गजाला दोनों उस चारपाई पर रस्सियों से बांध दी गई थी। उतारने के बाद उसने कोशिश की कि उन्हें होश आ जाए, मगर उन्हें बुरी तरह से बेहोश किया गया था। 11 बज चुके थे। फरीदी ने गजाला और हमीद ने सईदा को लादा और चलना शुरू किया। वो दौड़ खत्म हो चुकी थी। सईदा हमीद के ऊपर लदी हुई थी। उसका बस चलता तो वो सईदा को पटक देता, मगर फरीदी, ये क्या किस्सा है? दबी आवाज में हमीद ने फिर पूछा। ट्रेन में बताऊंगा, ये समझ लो अभी तक हम बाजी नहीं हारे हैं। स्टेशन की बिल्डिंग दिखने लगी थी। ट्रेन का अभी पता नहीं था, मगर सिग्नल हो चुका था। फरीदी ने खुश होकर हमीद से कहा, हम जीत गए, 5 मिनट बाद दुश्मन हमारे हाथ में होगा। ठहरो, पहले मुझसे फैसला कर लो। एक रोबदार और गरजदार आवाज सुनाई दी। फरीदी ने देखा, बगल में कुंवर जफर अली खां पिस्तौल लिए चले आ रहे थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उन्होंने फिर कहा, इन्हें रख दो, इन्हें रख दो। हमीद ने चाहा कि कम से कम फरीदी की तरफ गर्दन घुमा कर देख सके, मगर कुंवर साहब ने देख लिया। तुम सब बदमाश हो, मैं आज तुम्हें शूट कर दूंगा। फरीदी साहब, अब कहां गई वो अकड़? फरीदी खामोशी से कुंवर साहब की तरफ देखता रहा। बदमाश? बदमाश का शब्द सुनते ही हमीद ने झल्ला कर चाहा कि बढ़कर कुंवर साहब का गला घोंट दे, मगर कुंवर साहब ने इरादा भांपते हुए कहा, जरा सी हरकत हुई तो फरीदी इस दुनिया में ना होंगे। फिर उसने फरीदी को मुखातिब किया और कहा, हाँ फरीदी साहब, तो कल आप पुलिस से कह देंगे कि शाकिर का कातिल मैं हूं। आप मेरी वो तहरीर भी पेश कर देंगे जिसमें उसे धमकी दी गई थी कि अगर वो किताब मुझे ना देगा तो मैं उसे मार डालूंगा। अचानक ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दी। अपनी पूरी गड़गड़ाहट और शोर के साथ ट्रेन आ रही थी। रेल की पटरियां दूर से चमकती हुई साफ दिखाई दे रही थी। फरीदी के मुंह से एक खौफनाक आवाज निकली और कुंवर साहब एकदम से पीछे हट गए। आंख झपकते ही पिस्तौल फरीदी के हाथ में था। उसने जल्दी से कहा, आपने मेरा बहुत कीमती वक्त बेकार किया है, इन लड़कियों को यहाँ से ले जाइए, आप किसी गलत फहमी में हैं, हमीद जल्दी करो। कहते हुए फरीदी ने फिर दौड़ना शुरू कर दिया। स्टेशन के सीधे दरवाजे के बजाय अब उसका रुख रेलवे लाइन की तरफ था। ट्रेन ने प्लेटफॉर्म से हरकत की। रेलवे लाइन और फरीदी में सिर्फ 50 गज का फासला रह गया था। ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। फासला 10 गज, ट्रेन औसत रफ्तार पर थी, फासला 5 गज। ट्रेन फरीदी की बगल से गुजर रही थी। अचानक वो उछला और सामने से गुजरने वाले अंधेरे डिब्बे के पायदान पर खड़ा हो गया। हमीद से उसने चीख कर कहा, फौरन किसी डब्बे में घुस जाओ, और खुद उसी डब्बे में घुस गया। हमीद जिस डब्बे पर खड़ा था उसका दरवाजा अंदर से बंद था। उसने गर्दन उठाकर देखा, डिब्बे के ऊपर बनी हुई लकीरें जाहिर कर रही थी कि ये सेकंड क्लास है। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। सामने पुल आ रहा था और घाघरा नदी के किनारे कगारों के टूटने की तेज आवाजों का जोर बढ़ता जा रहा था। भयानक सुनसान रात, उसे डर लगने लगा। फरीदी के ऊपर उसे गुस्सा आ रहा था। खुद तो मजे में होंगे, मेरी भला उन्हें क्या फिक्र। अजीब सन की आदमी है, दौड़ा डाला, बैठे बिठाए मुसीबत जबरदस्ती। झल्लाहट में उसने खिड़की पर इतने मुक्के बरसाए कि खिड़की का एक खाना टूट गया। अंदर से बड़बड़ाने की आवाजें सुनाई दी और किसी ने उठकर दरवाजा खोल दिया। डिब्बे में दाखिल होकर उसने देखा सिर्फ 4 बर्थ थी। एक तरफ एक मोटी सी औरत जिसकी उम्र 20 साल से ज्यादा न रही होगी लेटी हुई थी। सामने एक साहब सो रहे थे, उनके ऊपर वाली बर्थ पर सर से पैर तक चादर ताने कोई पड़ा था। अलबत्ता औरत की ऊपर बर्थ जो थी वो खाली थी। डिब्बे में अंधेरा था लेकिन दूर एक छोटा सा बल्ब जल रहा था जिसकी रोशनी में हमीद देख सकता था। हमीद ने चारों तरफ देखा और ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। तमाम रास्ते की थकान, दौड़ और मेहनत ने सेकंड क्लास के गद्दे पर नींद ने उसको आवाज दे दी और वो सो गया। उसकी आंख खुली तो दिन अच्छा खासा निकल आया था। ट्रेन विंध्याचल की खूबसूरत पहाड़ी के बीच में से गुजर रही थी। उसने झांक कर देखा, वो औरत उठ चुकी थी। रात की उस मोटी सी औरत ने नजर उठाई और उसे मुस्कुराते हुए देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और अजीब अंदाज में बोली, अब नीचे आओ ना। हमीद को भला कहाँ बर्दाश्त, इतने दिनों बाद एक शिकार मिला था, क्या वो उसे भी छोड़ देगा। वो फौरन कूद पड़ा। जैसे ही उसने चाहा कि बैठे, औरत ने कहा, ना ना, पहले मुंह हाथ धोकर चाय पी लो फिर बातें करना। हमीद को उसकी इस बात पर कुछ झटका लगा, मगर सामने बैठे हुए बंगाली को मुस्कुराते देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसकी मुस्कुराहट कह रही हो, क्यों बे, डर गया ना आखिर बुद्धू डरपोक। और वो झट से बाथरूम में चला गया। मुंह धोकर जब वो बाहर निकला, औरत थर्मस में से चाय निकाल रही थी। रस से भरी हुई जलेबी और टोस्ट एक प्लेट में रखे हुए थे, भुने हुए आलूओं के टुकड़े दूसरी प्लेट में, सेब की कुछ फांकें और अंगूर के दाने भी पड़े थे। हमीद के मुंह में पानी भर आया। शाम को लाइब्रेरी में 2 उबले हुए अंडों और 1 प्याली चाय के अलावा उसे कुछ ना मिला था। बैठकर उसने खाते हुए कहा, आप कहाँ से हैं? लेकिन जुमला पूरा होने से पहले ही टीटी की आवाज़ ने उसे चौंका दिया, टिकट प्लीज। वो टिकट ना दे सकता था, सिवाय चार्ज देने के और कोई चारा ही क्या था। फिर जब चार्ज ही देना है तो जल्दी क्या है, खा कर दे देंगे, उसने सोचा और टीटी से कहा, अभी देता हूँ। औरत की तरफ बढ़कर जब टीटी ने हाथ बढ़ाया तो उसने हमीद की तरफ इशारा कर दिया, जिसे हमीद न देख सका। खूब पेट भर खाने के बाद उसने टीटी से कहा, पिछले जंक्शन से चार्ज कर लीजिए, जल्दी में टिकट ना खरीद सका। चार्जशीट बनाने के बाद टीटी ने कहा, 1200 रुपए। कितने? हमीद ने उछल कर कहा, जरा देखूं कहां से चार्ज बना रहे हैं आप। जी जबलपुर से, 2 आदमी सेकंड क्लास, टीटी बोला। दो कौन? हमीद घुर्राया। आप और आपकी ये कौन है आपकी, टीटी ने कहा। धर्म पत्नी, औरत कुछ झेपते हुए बोली, फिर हमीद की तरफ देखकर कहने लगी, अरे टीटी साहब को चाय पानी के लिए तो कुछ दे दो ना, इतना ना लेंगे। हमीद को जैसे हजारों बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। बटुए में सिर्फ 1000 रुपए और जबरदस्ती की मुसीबत अलग सर पर। उसने भड़कते हुए कहा, अरे ये औरत झूठी है, मेरा ऐसे कोई नाता नहीं।
बंगाली बाबू जोश में खड़े हो गए। ए, शर्म नहीं आता, अपनी औरत को छोड़ता है, छी थू। ऊपर वाला आदमी वहीं से लेटे लेटे बोला, अगर बीवी नहीं है तो फिर कौन है बे, हैं? अभी तो साथ में बैठ के खा रहा था, कहता कोई नाता नहीं, 420 साला। ट्रेन अब स्टेशन पर पहुंच रही थी। टीटी ने डांट कर औरत से पूछा, सच सच बताइए तेरा कौन है?
हाय हाय टीटी साहब, मेरे पति है, परसों हमारा।
वो कुछ रोते हुए बोली,
लो मेरे पैर देख लो।
उसके रंगे हुए पैर और चांदी के छल्ले गवाही दे रहे थे कि अभी अभी उसकी शादी हुई है। उसने फिर से हमीद का हाथ पकड़ते हुए कहा,
रुपए के डर से कंगन भी छिपा दिए ना, हाँ है ना, हाय मेरी तो तकदीर ही फूट गई।
कहते हुए उसने जोर जोर से चिल्लाकर रोना शुरू कर दिया। ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हो गई थी। अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी। हमीद की जान अजीब मुसीबत में फंसाई थी। उसकी तलाशी पर जेब से एक बटुआ जिसमें 1,000 रुपए, एक कंगन और 4-5 विजिटिंग कार्ड मिले, जिस पर लिखा था, धर्मदास बीए कमर्शियल आर्टिस्ट। औरत से जब नाम पूछा गया तो उसने कहा,
मैं उनका नाम नहीं ले सकती।
बड़े मुश्किल से उसने एक पर्चे पर वही नाम लिख दिया जिस नाम के विजिटिंग कार्ड बने थे। हमीद चकरा गया। चारों तरफ से लोग टूट पड़ रहे थे और उसे बुरा भला कह रहे थे। हमीद की निगाहें फरीदी को ढूंढ रही थी। उसने कई बहाने करके सिपाहियों के साथ ट्रेन के कई चक्कर लगा डाले, मगर फरीदी ना मिला। इधर ट्रेन ने सीटी दी। हमीद ने लाख चाहा कि उसे फिर ट्रेन में बैठने दिया जाए, मगर टीटी किसी हालत में ना माना। वो बार बार कहे जा रहा था,
पूरा चार्ज दीजिए और बैठ जाइए।
ट्रेन धीरे धीरे रेंगने लगी। हमीद ने आखिर बार कोशिश की कि वो बैठ सके, मगर नाकाम रहा और ट्रेन चली गई। भीड़ कम हो गई थी और वो औरत भी गायब हो गई थी। उसने मुड़कर टीटी से कहा, लीजिए चार्ज लीजिए, मगर मेरी बीवी को ढूंढ कर लाइए। टीटी हैरत में पड़ गया। अभी एक सेकंड पहले वो उसकी नर्म नर्म हथेलियों से मजा लेता हमीद से बहस में उलझा हुआ था।
वो औरत कहां गई?
शर्मिंदा होकर उसने हमीद से कहा,
मुझसे गलती हुई।
हमीद ने जेब से अपना कार्ड जब निकालना चाहा तो वो गायब था। एक कागज पर अलबत्ता लिखा हुआ था, पहली और हल्की सी चोट अपने हमीद के लिए, उस्ताद की भी खबर लेना। हमीद बौखला गया। जैसे ख्वाब की लहरें, सिनेमा की तस्वीरें या पूरी रेलगाड़ी उसके सिर पर से गुजर गई हो। वो सिर थाम कर बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कि इतने में उसी टीटी ने उससे आकर कहा,
आपका ट्रंक कॉल आया है हमीद साहब।
उसने रिसीवर से सुना, फरीदी कह रहा था, रामगढ़ लौटाओ। आप सुन रहे थे कहानी नकली नाक का भाग 2। आगे क्या हुआ उसके लिए सुनिए भाग 3।